स्वभाव है सोया रहता है प्रमादी। जब ये माता के उदर में था, बड़ी बड़ा कष्ट था, तो इसने प्रभु को विश्वास दिलाया कि उत्पत्ति के पश्चात वो भगवान का भजन करेगा। तो जैसे ही इस संसार में आया, इस संसार की छाया पड़ी, वो सब कुछ कहा सुना भूल गया। इस संसार की माया इतनी शक्तिशाली है कि सबको ही भ्रम में डाल देती है। व्यक्ति का जो अपना दायित्व है अपने ही प्रति, उसको वो भुला देती है। कबीर साहब भी कहते हैं, मैंने पुकार पुकार के संसार को कहा है, परंतु कोई सुनता नहीं। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, और भी महापुरुष कहते हैं, कोई हजारों लाखों में कोई व्यक्ति एक होता है जो भगवान का नाम लेता है, और उन हजारों लाखों में से कोई एक आदमी ऐसा होता है जिस ढंग से नाम लेता है, और उनमें से भी हजारों में से कोई एक होता है जो सही रास्ते पर चलकर, जो उसने विश्वास दिया था परमात्मा को, उसको पूरा करता है। भजो गोविंद, इसके क्या अर्थ क्या है? संसार का जीवन क्या है, मनुष्य का जीवन क्या है? प्रत्येक मनुष्य अपने संस्कारों के कारण अपनी वृत्ति बनाता है, अपना स्वभाव बनाता है। उसका कर्तव्य ये है कि ये मनुष्य चोला जो बड़ी खुशकिस्मती से उसको मिला है, वो बड़ा भाग्यशाली है, उसने पूर्व जन्म में भक्ति की होगी, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही हम परमात्मा से आए थे और परमात्मा तक पहुंच पाएंगे, और कोई साधन नहीं। सब महापुरुष हमें सचेत करते हैं कि इसी शरीर के रहते हुए हम अपने लक्ष्य को, कर्तव्य को पहचाने और अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाए। तो हम क्या हैं? हमारे जो पिछले संस्कार हैं, जब तक ये संस्कार हमारे साथ हैं, हम जन्म मरण के चक्कर से कभी छूट नहीं सकते। कभी मनुष्य चोला मिलेगा, कभी पशु का, कभी वृक्ष आदि बनेंगे। मोक्ष केवल मनुष्य चोले में ही साधना करने के बाद मिलती है। तो वे लोग भाग्यशाली हैं जिनको ये वर्तमान मनुष्य शरीर चोला मिला है। अब इन संस्कारों को खत्म कैसे करें? ये कहना बड़ा आसान है, परंतु इनसे मुक्त होना बड़ा कठिन है। पूजदारा जी महाराज ने, हमारे दादा गुरुजी ने उदाहरण दिया है कि दो चादरें हैं जो कांटों पर पड़ी हैं, कहा जाता है कि इन चादरों को वहां से उठाया जाए। तो एक तरीका तो ये है कि धीरे 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 एक एक कांटे से चादर को उठाया जाए ताकि चादर फटे नहीं, और दूसरा तरीका ये है कि एक ही झटका देके चादर को निकाल लिया जाए। तो ये धीरे धीरे एक एक कांटे से चादर को हटाने तरीके को ये भक्ति का मार्ग बताया है, और झटके से चादर को हटा लेना और फटे नहीं, वो उस तरीके को उजलाड़ा जी महाराज ने ज्ञान साधन बताया है। ये दो मुख्य साधन हैं मनुष्य को अपने संस्कारों से मुक्त होने के लिए, या दूसरे शब्दों में मोक्ष की प्राप्ति के लिए। भक्ति में समय अवश्य लगता है, साधन दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। जो लोग तर्क वितर्क करते हैं कि भक्ति अच्छी है, ज्ञान अच्छा नहीं, ज्ञान अच्छा है या भक्ति अच्छी नहीं, वो बेवकूफ हैं, वो दोनों में से एक भी साधन को नहीं करते हैं। भक्ति, सच्ची भक्ति करने वाला कभी ज्ञान को गलत नहीं कहेगा, और ज्ञान की सच्ची साधना करने वाला कभी नहीं कहेगा कि भक्ति का साधन गलत है। ये थोड़े बुद्धि वाले लोग करते हैं, सच्चे भक्त और सच्चे ज्ञानी ऐसी बातें नहीं करते। तो जैसे भी मनुष्य की वृत्ति हो, उसको वो रास्ता अपनाना चाहिए। रास्ते दोनों सही हैं, प्रेम का, प्रेमा भक्ति का भी और ज्ञान का भी। इस चादर को इस कांटों से अर्थात माया से हटाना है। कांटे हमारे संस्कार हैं। अपना स्वयं निरीक्षण करें, भीतर में देखें कि हमारे हमें कौन कौन से अवगुण हैं, कहाँ कहाँ हमारा मन फंसा हुआ है। पूज्यदाता गुरु जी ने रास्ता भी बताया है कि एक एक अवगुण को लेके उससे मुक्त होने के लिए बार बार ईश्वर से प्रार्थना करें, बार बार ईश्वर से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, ताकि उस बुराई से बच जाएं। और साधन भी बताया है, इसमें समय लग जाता है। तो जो सच्चा ज्ञानी है, वो अपने स्वरूप को शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, अनंत से हटाकर आत्मा में लय कर देता है। तो जब आत्मा आत्मा में लय हो जाती है, केवल बातों से नहीं, दृढ़ संकल्प से, सच्चे साधन से, ईश्वर कृपा से, ऐसा हो पाता है। बातों से नहीं होता कि मैं ब्रह्म हूं, इससे कुछ नहीं होता। वो भी एक ज्ञान भक्ति है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अर्थ है कि आपने तुरंत ही गुरु अपने गुरु से उपदेश सुना, वो उस पर मनन किया, और उपदेश आपके रोम रोम में समा गया, आप वैसा बन गए। शंकराचार्य ने कहा, तत्वमसी, तुम तो वही हो जैसे परमात्मा हैं। उसने ऐसे बल से, ऐसे शक्ति से अपने जिज्ञासु को कहा कि उसके सब वृत्ति को बदल दिया। ये गुरु कृपा होती है, ये तो इतिहास होगा, माने न माने। योगानंद ने अपने लाइफ में लिखा है, ये बड़े चंचल स्वभाव के थे, विवेकानंद की तरह ही बड़े चंचल स्वभाव के थे। गुरु के चरणों में रहे, गुरु धीरे धीरे जैसे साधक प्रगति करता है, वैसे ही उसको योग रास्ता बताते हैं, जल्दी नहीं करते। परंतु योगानंद में बड़ा उतावलापन था। ये एक दिन साधना कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे, गुरु ने आवाज दी, योगानंद उतावले थे, क्रोध भी आ जाता था। कहा, सब आप देखते नहीं, मैं साधना कर रहा हूं, मैं ठहर के आ जाऊंगा, आप थोड़ी समय के लिए मुझे क्षमा करें। गुरु को शिष्य कहता है, परंतु गुरु ने कृपा करनी थी, उन्होंने जोर से कहा, नहीं तुम अभी आओ। योगानंद गए, जैसे योगानंद खड़े, उनके गुरु ने उसके सीने पर जोर का मुक्का मारा। योगानंद घबरा गए कि क्या हुआ। वो मुक्का क्या मारना था, उसके सारे संस्कार खत्म कर दिए। उसका जो मन अहंकार अपने शरीर के साथ और ये ख्याल कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, उस अहंकार को तोड़ दिया और उसको आत्मा का साक्षात्कार करा दिया। जैसे अग्नि में सोना डाला जाता है, अग्नि से निकाला जाता है, तो वो निर्मल हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। इसी एक साधन से योगानंद को निर्मल कर दिया, प्रकाशमय कर दिया, आत्ममय कर दिया। उसके बाद वो स्वयं गुरु बन गया। अब या तो कोई ऐसा महापुरुष मिले, ऐसा महापुरुष ईश्वर रूपी होता है, वो तब मिलता है जो कई जन्मों का तप किया जाता है। एक ही जन्म में साधारण साधन करने से ऐसा महापुरुष नहीं मिलता है। पूज्य गुरु महाराज कहा करते थे, हमारे सावन सिंह का उदाहरण देकर, कि 10 जन्म तो लग जाते हैं भक्ति करने में, तब जाके ये मनुष्य वाला मिलता है। हाँ, सच्चा गुरु मिलता है, और गुरु का उपदेश लेकर 4-5 जन्म तो साधना करनी पड़ती है, तब जाके हमारा उद्धार होता है। उद्धार का मतलब ये है कि हमारी जितनी वृत्ति हैं, जितने हमारे संस्कार हैं, जितना हमारा अतीत का कर्जा है, वो सब उतरता है। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला, जब आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्मा निर्मल है, गंग नीर की तरह निर्मल है, कोई संस्कार नहीं, कोई वृत्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं। निर्मलता जो है वो आत्मा की है, शरीर की निर्मलता नहीं। साबुन लगाया, शरीर साफ सुथरा हो गया तो कह दिया निर्मल है, ये नहीं निर्मल नहीं है। यहाँ निर्मल के अर्थ है आत्मा के। आत्मा को कोई दोष नहीं, आत्मा पर कोई संस्कार नहीं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं। आत्मा परमात्मा हमेशा हमेशा ही निर्मल रहते हैं। उसको वो संसार में रहे भी तो कोई छाया नहीं पड़ती उन पर। ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे जल में, जैसे जल मैल न लागे जला, जैसे कमल मैल न लागे कमल मला। यानी कमल जो होता है कीचड़ में होता है, परंतु उसको कीचड़ नहीं लगता है, वो बिल्कुल निर्मल रहता है। ज्ञानी भी संसार में रहता हुआ, कीचड़ रूपी संसार में रहता है, उस पर किसी प्रकार की इच्छा है नहीं पड़ती है, कोई दोष नहीं उस पर लगता है। वो खाता पीता हमारे जैसा पता नहीं लगता है हमारे। तो जीते जी प्रत्येक व्यक्ति को निर्मल होना है, और निर्मल होने के लिए ही ये सब साधना है, जिसको हम कहते हैं भजन करो, नाम लो, आंख बंद करके बैठो, ज्ञान के लिए किसी महापुरुष के पास बैठकर उससे उपदेश सुनो, श्रवण करो, फिर मनन करो, नित्यासन करो, वैसे हो जाओ। भक्ति भी कई प्रकार की है, भक्ति के साथ भाव होना चाहिए। भाव 9 प्रकार के होते हैं, तो अंतिम भाव जो है वो कांता भाव है। बिना भाव के भक्ति नहीं होती, बिना भक्ति के भगवंत नहीं मिलते हैं। तो ये सब नाम में आ जाते हैं, एक अक्षर नाम जो है, ये सब बातें उसी में आ जाते हैं। नाम का अर्थ है उपाय, जिस उपाय से हम अपनी आत्मा को परमात्मा में लय करते हैं, इस उपाय को ही साधन कहते हैं, अभ्यास कहते हैं, नाम कहते हैं। तो कबीर सब चेतावनी दे रहे हैं, टूट जाएंगे, शरीर काम नहीं देगा, उस वक्त भी तुम नहीं ईश्वर को याद करते हो। यही हालत होती है, जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती है, ईश्वर से लगाव कम होता चला जाता है। चाहिए तो ये ईश्वर से लगाव बढ़े। सामान्यतः मनुष्य अपने परिवार में फंस जाता है, राग द्वेष होता है, बुढ़ापे में इच्छाएं इतनी उत्पन्न हो जाती हैं, आशाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि वो अपना संतुलन खो बैठता है। परमात्मा की तरफ जो उसका दायित्व है, उसकी तरफ ध्यान उसका हटता चला जाता है। आखिर अंतिम समय में बड़े बड़े अच्छे लोग बड़ी बुरी तरह उनका अंत होता है। इसलिए कहते हैं बिना ईश्वर की कृपा से वो जो अंतिम समय है, अंतिम क्षण है, वो ईश्वर की याद में गुजरे। ईश्वर की याद का मतलब है हमारी आत्मा उस समय मरने से पहले मर जाए, आत्मा से परमात्मा से लय हो जाए। वो हो केवल राम कहने से खैर फायदा तो है, परंतु आत्मा परमात्मा से लय हुई हो उस वक्त, शरीर के साथ मोह ना हो उस वक्त, शरीर की पीड़ा महसूस ना हो, इस शरीर के संबंध जो है उनकी पीड़ा महसूस ना हो। त्याग करने से बड़ी पीड़ा होती है, ये सब कांटे हैं, ये सब पहले हट जाने चाहिए। उस वक्त नाम का मतलब है कि उस वक्त आत्मा परमात्मा में लय हुई है। परलोक में जाके मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलना है तो यही मिलेगा। यही है अंतिम समय घड़ी का, नाम को याद करना, परमात्मा को याद करना। मतलब ये है कि हमारी सुरती हमारी आत्मा परमात्मा में पूर्णता लय हुई हो, अपने साथ किसी प्रकार का बोझ संस्कारों का बोझ ना लिया हो। कल भगवान शिव का शिवरात्रि का पवित्र जन्म पवित्र उत्सव है। भगवान शिव ज्ञान के दाता हैं। हमारा संगार भी करते हैं, संगार हमारे अहंकार का करते हैं, वे हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। उनका जीवन ही जो है वो ज्ञान की रिश्मे लिए हुए है, चारों ओर ज्ञान की रिश्मे फैलती है। उन रिश्मों के आगे जो भी बुराइयां जाती हैं, विष जाता है, सब वहां खत्म हो जाता है। हमारी बुराइयां होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। वो हमेशा हमें प्रकाश देते रहते हैं और त्रिशूल धारण करके हमारा आज्ञा चक्र खोलते हैं ताकि हम भी ज्ञान को। हम लोग व्रत रख लेते हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा है, कुछ तो याद आती है, परंतु समझना चाहिए कि ये दिन क्यों पवित्र है। हमें मरना है, मरने से पहले उस प्रीतम की गोद में जाना है, इस शरीर छोड़ने से पहले। और प्रत्येक मनुष्य को शिव रूप बनना है। सिर्फ शिव रूप की भगवान शिव की कहानियां सुन के संतुष्ट नहीं, संसार उत्तेजना देखा सब बर्दाश्त करना है, पी जाना है, संसार सब पी जाना है, संसार हमें दुख देगा, सब दुख हर लेने हैं, अपने ऊपर ले ले। भगवान शिव सबके भीतर में है, वो बाहर में भी है, भीतर में भी है। वास्तव में ये तो शिव का आकार बनाकर बताया है, शिव और परमात्मा एक ही। तो कबीर साहब के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि वो अपने लक्ष्य को न कभी भूले और लक्ष्य के प्रति जो दायित्व है उसके प्रति परमादी न हो। जब हम ऐसा करेंगे भगवान की कृपा होगी। कृपा तो उनकी अवश्य होती है, परंतु हम अधिकार अपना नहीं जमाते हैं, अधिकारी नहीं बनते हैं। पूज गुरुदेव आप सब पर कृपा करें, परंतु हम सबको जो सत्संग में भी आते हैं उनको ज्यादा सतर्क होना चाहिए।